मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 12 सितंबर 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं शैलेंद्र यादव, आपका गांव है खजूरिया, जिला गौंडा उत्तर प्रदेश से। राम नरेश धायत, आपका गांव है बराहो, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से। और राधिका पाटिल, आप हैं बेलगाम कर्नाटक से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे भारत में पशुधन के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी दूसरे विषयों पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहूंगा। एक आप मोटर वाहन एक्ट जो अभी लागू किया गया है उसके बारे में खबरें पढ़ रहे हैं, और गुजरात सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि मोटर वाहन कानून को तो उसने अपने यहां लागू कर भी दिया था और लागू किए ही रहेगा, लेकिन उसमें जो जुर्माने की राशि है उसमें वो कमी कर रहा है, काफी कमी कर रहा है। और जैसे ही गुजरात ने इस बात की घोषणा की है, अब दूसरे राज्यों को भी एक तरीके से कह लीजिए कि कमी करने का बहाना मिल गया है। इसके दो पक्ष हैं और मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी भी चाहिए। इससे देखिए, जो प्रश्न बनता है वो ये है कि जो दंड की व्यवस्था की गई है उसमें वो काफी अधिक है, जुर्माने की जो राशि रखी गई है वो काफी अधिक है। बल्कि एक दो खबरें तो ऐसी भी आई कि जब एक ऑटो वालों को पुलिस ने पकड़ लिया तो उसके ऊपर जो टोटल जुर्माना लगा अलग अलग अपराधों के मामले में, तो उसकी जो जुर्माने की राशि थी वो उसके ऑटो के बिकने की राशि से लगभग दुगुनी थी। तो उसने कहा कि भैया मेरा ये ऑटो ही रख लो, फिर जुर्माना मैं क्या दूंगा। तो ऐसी स्थितियां आती हैं। तब सवाल यह है कि जो कड़े दंड होते हैं वे अपराधों को कम करने में या रोकने में कहां तक सहायक हो सकते हैं, यह प्रश्न बनता है। इसके संदर्भ में सीधे सीधे मोटर एक्ट पर प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में देखिए एक दो बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं परिवहन के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो व्यवस्था की गई है ये कोई हमारा खजाना भरने के लिए नहीं की गई है कि हम इससे कमाई करेंगे, बल्कि लोगों के मन में एक भय पैदा करने के लिए इतनी भारी दंड की व्यवस्था की गई है ताकि वे अपराध करें ही नहीं। और यह मैं अपने अनुभव से बताना चाहूंगा, यानी कि मुझे दंड देना पड़ा था। फॉरेन कंट्रीज में छोटी छोटी सजाओं अपराधों के लिए, बड़ी बड़ी सजाएं छोटे छोटे अपराधों के लिए, और सच ये है कि वहां इस भय से ही कि बहुत ज्यादा दंड है, लोग अपराध करने से डरते हैं। छोटे छोटे जैसे कि मैं मोटर वाहन अपराध या कहीं थूकना नहीं है, कहीं गंदगी नहीं फैलाना है, इनको लेकर के भी बहुत बड़े बड़े दंड की व्यवस्था की गई है। तो सीधी सी बात है कि दंड की जो व्यवस्था की जाती है वो राजकोष में वृद्धि करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मन में भय पैदा करने के लिए, ताकि लोग अपराध करने से ही डरे। लेकिन भारत की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी अलग तरीके की है, तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ी सी एक व्यावहारिक तरीके को हमें अपनाना पड़ता है। इस एक्ट में दो तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ ऐसे दंड हैं जिनमें राज्य परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्ट ऐसे हैं या दंड ऐसे हैं जिनमें राज्य परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं आपको एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। जहां तक भारत की बात है मित्रों, सलाह के तौर पर, उपाय के तौर पर दो बातें कही जाती हैं। पहला तो यह है कि हमारा जो कानून के प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट की बात है, उसके उस पर बहुत अच्छे से काम किया जाना चाहिए। हमारा इन्फोर्समेंट सिस्टम बहुत कमजोर है। और दूसरा यह है कि जो हमारा रोड, हमारे रोड जिस तरह के हैं, जो मार्ग जिस तरह के हैं, उनमें काफ़ी सुधार किए जाने चाहिए, तब जाकर के हो सकता है कि जो मोटर वाहन से जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं भारत में इन दुर्घटनाओं से होती हैं, उस पर कुछ नियंत्रण हो सके। दोस्तों, आज मैं आप सबको दैनिक भास्कर में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं मनमोहन सिंह जी, उनका एक इंटरव्यू छपा है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से, और इसे इस रूप में पढ़िए कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनके माध्यम से आप अर्थशास्त्र को समझ सकें, यानी कि अर्थशास्त्र को समझने की दृष्टि से पढ़िएगा। सीधे कोई लेख या निबंध आप या कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें खासकर इसके सेकेंड पैरा में मैं आपको केवल पढ़ करके सुना रहा हूं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि समझने की और भी बहुत सी इसमें आपको पंक्तियां मिलेंगी, और मैं चाहूंगा कि इत्मीनान से आप इसके साथ काफी समय बिताएं, इससे इकोनॉमिक्स की आपकी समझ बढ़ेगी, और साथ ही साथ आप यूं कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स का एक तरीके से रिविजन भी हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो बात कही है वो मैं आपको यहां सुना रहा हूं। इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। भारत में पर्याप्त अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है जो नगदी पर चलती है। इसके बड़े हिस्से में वैध गतिविधियां शामिल हैं जो कर सीमा के दायरे से बाहर हैं और इसीलिए उन्हें काली अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। यह नोटबंदी के दौरान सिस्टम से नगदी गायब होने से प्रभावित हुई थी। असंगठित क्षेत्र में 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। इसके बड़ी संख्या में लोग गांव में लौट गए और मनरेगा के काम की मांग में काफी वृद्धि हुई। ये मैंने बहुत ही सरल सा अंश आपको दिया है, बीच की कुछ पंक्तियां मैंने जानबूझ करके गायब कर दी हैं, जब आप पढ़ेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें। देख, इस पर आप अपनी तरफ से लिखें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी अंश को आपको किसी को समझाना है, एक 8वीं क्लास के स्टूडेंट को समझाना है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे कि कहने का आशय क्या है? तो मित्रों, इस पर आप लोग थोड़ा सा समय जरूर दीजिएगा। कल आप लोगों ने टीवी चैनल पर देखा होगा, जब मैं टीवी चैनल की बात करता हूं तो खासकर दूरदर्शन न्यूज की ही बात करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी मथुरा गए थे और वहां उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कही कि एक ऐसे प्लास्टिक जिनका एक ही बार में प्रयोग होता है, इन्हें नष्ट किया जाना चाहिए और बहुत जल्दी भारत इसके लिए कदम उठाने वाला है। एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि शुरुआत ही कर दी गई है और उस पर एक डिस्कशन भी रखा गया था। हमारे यहां एक कानून भी है कि 50 माइक्रोन से जो कम वाले जो प्लास्टिक हैं, जो पॉलीथीन है, उनका यूज नहीं किया जाए। उसमें एक बहुत अच्छा आंकड़ा आया था जिसे आप याद रख सकते हैं कि हमारे यहां रोजाना जितना प्लास्टिक उत्पादन होता है यानी यूज होता है, उसका केवल हम 30% ही रिसाइकिल कर पाते हैं। 70% कहां जाता है? यानी कि 70% जमीन में है, पानी में है और इसके संकट जो पर्यावरण के सामने आ रहे हैं उन सबसे हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। और मित्रों, प्लास्टिक पर नियंत्रण एक बहुत बड़ा, अब आप यूं कह लीजिए कि एक नीति है, नियम है, अभियान है, जिसके लिए प्रधानमंत्री लगातार जोर दे रहे हैं। यहां तक कि 15 अगस्त को लाल किले से भी उन्होंने ये बात कही थी। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सिविल सर्विस का बनता चला जा रहा है, प्लीज आप इस पर ध्यान दें। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, कल के टीवी चैनल पर आपने देखा, जिस पर सबसे ज्यादा समय दिया गया वो था हमारे प्रधानमंत्री मथुरा में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्घाटन करने गए थे, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अब आप देखिए कि यहां जो ध्यान देने की बात है, आज के आप अखबार उठाकर देखें, जब आप अखबार उठा करके देखेंगे तो इस विषय पर आपको ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। कुछ अखबारों ने जो इसे लिया भी है तो उनका अपना तरीका है। देखिए, अखबार सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए नहीं छप रहे हैं, है ना, वो आम आदमियों के लिए छप रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जो ये वक्तव्य दिया था कि लोगों की गाय की बात कीजिए तो तुरंत उनके कान खड़े हो जाते हैं, ओम कहिए तो तुरंत उनके काम खड़े हो जाते हैं, इस स्टेटमेंट को लोगों ने तरजीह दी है, अखबारों में छपा भी है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए क्या जरूरी है? अगर आपने वो न्यूज वहां नहीं देखी है तो स्वाभाविक तौर पर, और आप पूरी तरह से अगर अखबारों पर ही निर्भर कर रहे हैं, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा। आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी नहीं करेंगे, ये नहीं समझ पाएंगे कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो स्वाभाविक है कि आप सोचेंगे कि अरे ये कहां से आ गया। तो मित्रों, इसीलिए मैं लगातार इस बात पर जोर देता हूं कि आप न्यूज भी सुनिए और अखबार तो आप पढ़ते ही हैं और पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को विस्थापित करने वाले नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो अब ये जब राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो अब आप मान करके चलिए कि जो पशुधन है भारत में, जो एनिमल हस्बेंड्री है या पशुपालन है, यह एक प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए ये इसलिए भी है कि सरकार ने कहा है कि 2022 तक वो बाकायदे किसानों की आय को दुगना करेगी। तो दुगना कैसे होगा? हमारी जो कृषि की विकास दर है वो मुश्किल से 2% प्रतिवर्ष है, तो इसके माध्यम से तो आप किसानों की आय को दुगनी नहीं कर सकते। किसानों की आय दुगनी तभी हो सकती है जब ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है, जो कृषि से ही भले जुड़ी हो, जिन्हें हम सहायकी की व्यवस्था कहते हैं, सब्सिडरी एक्टिविटीज कहते हैं, उन सब्सिडरी एक्टिविटीज पर ध्यान दें। तो दोस्तों, अब इसके दो पक्ष हैं, मैं पहले थोड़ा सा उस जो कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने 2019 से 2024 तक के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और ये इसका पूरा का पूरा जो 13,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, यानी कि प्री एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके तहत 50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा जिसमें गाय, भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवर शामिल हैं। 50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण, और खासकर पशुओं में दो सबसे बड़े रोग होते हैं मुखपका और खुरपका। मुख से लार निकलने लगती है, उनके खुर में घाव हो जाते हैं, और ये एक संक्रामक रोग है जो विषाणुओं से होते हैं, और इसके बाद फिर उनका दूध का उत्पादन भी कम हो जाता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इनको नियंत्रित करना, इन दो रोगों को नियंत्रित करना इसका सबसे ज्यादा बड़ा उद्देश्य है। ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक हम इन रोगों पर नियंत्रण पा लेंगे और 2030 तक इन रोगों का हम पूरी तरह से उन्मूलन कर लेंगे। हमारे जो 687 जिले हैं वहां कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र पर इससे संबंधित एक्टिविटीज सारी एक्टिविटीज होंगी, और इसी में जानवरों का कृत्रिम गर्भाधान कराना भी शामिल है। तो दोस्तों, ये था ये जो नियंत्रण कार्यक्रम है इसके बारे में कुछ तथ्य। अब मैं थोड़े से आपको पशुपालन के बारे में दो तीन महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। देखिए कि जो पशुपालन है हमारे, एक समय में तो आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति का विकास हुआ, हमारी नहीं बल्कि दुनिया की संस्कृति का जो विकास हुआ, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पशुपालन का चरण रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। और इसके बाद फिर हम कृषि व्यवस्था में एंटर करते हैं। तो जो पशुपालन है इसका हमारे टोटल GDP में 4% योगदान है, जबकि हमारे पूरे कृषि का योगदान 15% है। और कृषि को अगर हम मान लें 100%, तो उसमें 26% जो योगदान है वो पशुपालन का है, यानी कि कृषि क्षेत्र की जो टोटल कमाई हो रही है मोटे तौर पर उसकी जो 1/4 कमाई है वो पशुपालन से है, और इसी से आप इसके महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। हमारी जो कृषि विकास की दर है वो हार्डली 2% पर एनम है, प्रतिवर्ष 2%, जबकि जो पशुपालन की विकास दर है वो प्रतिवर्ष 4-5% है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र को महत्व दे करके हम अपने किसानों की आय को बढ़ाने में कितने अधिक सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें पशुपालन के बारे में थी, और एक बार मैं फिर आप सबसे कहना चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप सब महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर तैयारी करें। सितंबर के एग्जाम की तो बात अब नहीं की जा सकती है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का चाहे प्री हो या मेंस हो, उसके लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक माना जा सकता है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की जहां तक क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से एक मित्र हैं आशीष श्रीवास्तव गोरखपुर विश्वविद्यालय से, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।